प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम टीम की ओर से हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है कि आप परम प्रधान परमेश्वर पिता की महान करुणा से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करें, हम अपने श्रोता भाई बहनों को बता दें कि इन दिनों हम पुराने नियम से मीका नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का नाम इसके लेखक मीका नबी के नाम पर है। ये मात्र 7 अध्यायों की एक छोटी पुस्तक है और इस पुस्तक का मुख्य विषय है कौन है जो यहोवा के समान है, अर्थात न्याय, नबूवत, वाद विवाद तथा क्षमा करने में कौन है जो यहोवा के समान है। पुस्तक को आरंभ करने से पूर्व हम इसकी रूपरेखा तैयार कर लें, जिससे कि हम इसके संदेश को स्पष्ट रूप में समझ सकें। वैसे हमने पिछले कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा के विषय में आपको कुछ बताया है, किंतु आज हम पुनः इसकी रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आप इस पुस्तक के अध्ययन को सरलता पूर्वक कर सकें। हमारा शीर्षक है, कौन है जो परमेश्वर के समान है। यदि आप चाहें तो ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं और चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 3 अध्यायों में भूतकाल में किए गए पापों के लिए भविष्य में दंड की घोषणा। भूतकाल में किए गए पापों के लिए भविष्य में दंड की घोषणा। इसके अंतर्गत सामरिया तथा यरूशलेम के विरुद्ध नबी का प्रथम संदेश, विशिष्ट पापों के विरुद्ध नबी का दूसरा संदेश और तीसरा विषय होगा अगवों के पापों की निंदा करते हुए नबी का तीसरा संदेश। तब दूसरा खंड है अध्याय 4 तथा 5 में भूतकाल की प्रतिज्ञाओं के कारण भविष्य की महिमा की भविष्यवाणी। भूतकाल में प्रतिज्ञाओं के कारण भविष्य की महिमा की भविष्यवाणी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अंतिम दिनों के संबंध में नबूवतें और मसीह के दूसरे आगमन तथा उनके राज्य से पूर्व मसीह के प्रथम आगमन की नबूवत। तब तीसरा खंड है अध्याय 6 में भूतकाल में छुटकारे के कारण वर्तमान पश्चाताप के लिए वाद विवाद। भूतकाल में छुटकारे के कारण वर्तमान पश्चाताप के लिए वाद विवाद, अर्थात बहस। तब चौथा विषय होगा परमेश्वर के क्षमा करने तथा करुणा में गुण के कारण समस्त अधर्म की क्षमा। परमेश्वर के क्षमा करने तथा करुणा में गुण के कारण समस्त अधर्म की क्षमा। तो इस प्रकार से इन 4 विषयों को लेकर हम मीका की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। स्वामी आशा है कि ये रूपरेखा मीका की पुस्तक का अध्ययन करने में आपकी सहायता करेगी, आपकी सहायक सिद्ध होगी। सो आइए आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करें, अपने मनों की तैयारी व आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी, परम प्रधान, जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर और पवित्र क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमें सिखाएं, समझाएं और हमारी सहायता करें कि हम इस पर विश्वास कर सकें और उस विश्वास के अनुसार आचरण भी कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है, निराशा में डूबा हुआ है, किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल में से देखिए मीका नबी की पुस्तक, जो पुराने नियम में है। मीका नबी की पुस्तक, उसका 1 से 7 पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सामरिया और यरूशलेम के विषय में यहोवा का ये वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मीका मोरेशेती को दर्शन में मिला। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी और उसके सब लोगों कान लगाओ, प्रभु यहोवा, हाँ प्रभु ही अपने पवित्र मंदिर से तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दे, क्योंकि देखो परमेश्वर अपने निवास स्थान से बाहर निकल रहा है, वह नीचे उतरेगा और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदेगा और पर्वत उसके नीचे पिघल जाएंगे और घाटियां फट जाएंगी, वे आग से पिघलती मोम और ढाल से बहते जल के समान हो जाएंगे। ये सब याकूब के अपराधों और इसराइल के घराने के पाप का परिणाम है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को मैदान के खंडहर का ढेर, हाँ दाख लगाने का स्थान बना डालूंगा। मैं उसके पत्थरों को घाटी में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव को उखाड़ फेंकूंगा। उसकी सब मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी और उसकी सारी कमाई आग में भस्म कर दी जाएगी और उसकी सब मूर्तियों को मैं चकनाचूर कर डालूंगा, क्योंकि उसने इन्हें वैश्याओं के द्वारा संचित किया है और वह सब फिर से वैश्यावृत्ति की कमाई हो जाएगी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। जैसा कि हमने आपको पुस्तक का परिचय देते समय बताया था कि प्रथम तीन अध्याय अभियोगात्मक हैं, निंदात्मक हैं। परमेश्वर पिता इसराइल प्रजा पर उनके दोष व अपराधों को प्रकट करते हैं और इसलिए प्रथम अध्याय का शीर्षक है भूतकाल में किए गए पापों के लिए भविष्य में दंड की घोषणा। इस छोटी महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में एक आक्रामक कथन अवश्य होगा, कभी कभी एक ही पद में और कभी कभी अनेक पदों में हम ऐसे आक्रामक कथनों को पढ़ेंगे जैसा कि यहां हम प्रथम अध्याय में देखेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम पद को आप हमारे साथ देखें, सामरिया और यरूशलेम के विषय में यहोवा का वो वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को दर्शन में मिला। मित्रवर, सामरिया नगर उत्तरीय राज की राजधानी था। उत्तरी राज तो इसराइल कहलाता था। ये नगर इसराइल के राजा ओमरी द्वारा बसाया गया था। ये प्रतिमा पूजा का गढ़ था। यहां प्रतिमा पूजा का सिंहासन था। आहाज तथा इजाबेल ने बाल देवता के मंदिर की स्थापना करने के द्वारा इसे और भी अधिक प्रसिद्ध या यूं कहिए कि कुख्यात बना दिया था। सामरिया नगर की स्थिति बड़ी सुंदर थी, किंतु आज वहां केवल खंडहर ही देखने को मिलते हैं और ये उजाड़ खंडहर मीका नबी की नबूवत की यथार्थता की साक्षी देते हैं जो उसने सामरिया के विरुद्ध की थी। सामरिया मीका नबी की नबूवत के अनुसार यथाशब्द नाश कर दिया गया और जिस समय यहोवा का ये वचन मीका मोरेशेती को पास पहुंचा, उस समय दक्षिणी राज यहूदा पर योताम, आहाज तथा हिजकिय्याह राजा राज्य कर रहे थे। मीका मोरेशेती का अर्थ है कि मीका गत के मोरेशेत ग्राम का निवासी था जो यरूशलेम से दक्षिण पश्चिम की ओर था। यद्यपि वह यहूदा राज्य का निवासी था और उसने दोनों राज्यों के संबंध में नबूवत की, परंतु उसका मुख्य संदेश उत्तरी राज्य के लिए था। स्वाइये देखें नबी का प्रथम संदेश। संदेश सीधा सामरिया के संबंध में था, किंतु यह यरूशलेम तक पहुंचता है। दूसरे पद को देखिए, मीका नबी अपना संदेश प्रारंभ करता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी और उसके सब लोगों कान लगाओ, प्रभु यहोवा, हाँ प्रभु ही अपने पवित्र मंदिर से तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दे। मित्र, संदेश सभी लोगों के लिए है जिसमें आप भी सम्मिलित हैं। आज आप चाहे जहां कहीं भी हो, मीका के पास आपके लिए और मेरे लिए संदेश है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो। अन्य नबियों ने एक प्रसिद्ध या एक विशेष परिस्थिति के लिए संदेश दिए और उनके संदेश समय के साथ लुप्त भी हो गए, किंतु मीका के संदेश हमारे समय से भी संबद्ध हैं, क्योंकि उनमें कुछ विशेष सिद्धांत पाए जाते हैं। मीका मानव सरकार का दर्शन प्रस्तुत करता है। वास्तव में सरकार का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है, वो तानाशाह हो अथवा प्रजातंत्र हो, महत्वपूर्ण है शासक का चरित्र। यदि तानाशाह उत्तम चरित्र का व्यक्ति है तो वह एक अच्छी सरकार दे सकता है। यदि व्यक्ति का उत्तम चरित्र ना हो तो प्रजातंत्र भी अच्छी सरकार देने में विफल रहता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपना राज्य स्थापित करेंगे, उनकी सरकार का स्वरूप तानाशाह होगा। वह उचित तानाशाह होंगे। आज हमारी रुचि चरित्र की अपेक्षा दिखावे में अधिक है। मीका अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में इस विषय के साथ व्यवहार करेगा। तीसरे अध्याय के 11वें पद में वो कहता है कि उसके अगुवे घूस लेकर न्याय चुकाते, उसके याजक दाम लेकर शिक्षा देते और उसके नबी रुपए लेकर भावी कहते हैं। फिर भी वे यहोवा पर भरोसा रखकर कहते हैं, क्या यहोवा हमारे मध्य नहीं? हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। श्रोता, मीका इस तथ्य पर अपनी उंगली रखता है कि उनके नबी झूठे हैं, उनका धर्म झूठा है और उनके अगुवे झूठे हैं। मीका कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी और उसके सब लोगों कान लगाओ। इसका अर्थ है कि वह हम सब से कह रहा है, क्योंकि हम सब ही हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। फिर मीका कहता है, प्रभु यहोवा, हाँ प्रभु ही अपने पवित्र मंदिर से तुम्हारे विरुद्ध साक्षी दे। इसका अर्थ है कि जो कुछ मीका कहने जा रहा है, उसका साक्षी वह प्रभु यहोवा को बना रहा है। पवित्र मंदिर से यहां तात्पर्य है स्वर्ग। परमेश्वर स्वर्ग में अपने पवित्र मंदिर में था, जैसा कि अब भी है, और परमेश्वर न्याय करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरेगा। तब यहां प्रथम अध्याय के तीसरे पद को देखिए, क्योंकि देखो परमेश्वर अपने निवास स्थान से बाहर निकल रहा है, वह नीचे उतरेगा और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। अब ये भाषा कानों को अच्छी लगती है, यद्यपि अनेक रूप से डरावनी भी है। मीका कहता है कि परमेश्वर नीचे उतरेगा और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। मित्र, ये ऊंचे स्थान क्या हैं? ये ऊंचे स्थान प्रतिमा पूजा के स्थल थे। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर उपवनों में प्रतिमाएं स्थापित थीं। यहां तक कि उन दिनों में नगर भी ऊंचे स्थानों पर बसाए जाते थे। सामरिया तथा यरूशलेम दोनों नगर पर्वतों पर स्थापित थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नगर पर्वत पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और इस प्रकार अपने चारों ओर के क्षेत्र पर नगर का महत्वपूर्ण प्रभाव था। और जब कोई नगर सरकारी रूप से महत्वपूर्ण हो, राजा की राजधानी हो, तब तो उसका प्रभाव न केवल आसपास के क्षेत्र पर पड़ता है, वरन समस्त विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही नगर बड़े बड़े अपराधों के भी केंद्र होते हैं, और इसलिए परमेश्वर दंड के साथ स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। वह पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। तब चौथे पद में हम पढ़ते हैं कि और पर्वत उसके नीचे पिघल जाएंगे और घाटियां फट जाएंगी, वे आग से पिघलती मोम और ढाल से बहते जल के समान हो जाएंगे। श्रोता, ये पद ज्वालामुखी तथा भूकंप की ओर संकेत करता है। हम न्यायियों की पुस्तक से लेकर हबक्कूक नबी की पुस्तक तक इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता देखते हैं। उदाहरण स्वरूप भजन संहिता के भजन 18 उसके 7-10 पदों को हम देखें। आइए आप हमारे साथ देखिए भजन 18 उसके 7-10 पद। यह इस प्रकार से बताया गया है कि तब पृथ्वी डोल गई और कांप उठी, और पर्वतों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकल उठा, उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी और उससे कोयले धधक उठे, और वह आकाश को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पैरों के नीचे घना अंधकार था। वह करूप पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर वेग से उड़ा। अब यद्यपि ये भाषा उच्च स्तर की अलंकारी और भयानक भाषा है, किंतु ये घटना का वास्तविक चित्र दर्शाने में सक्षम है। ये भाषा एक प्रश्न खड़ा कर देती है कि मौसम तथा प्राकृतिक शक्तियों को कौन नियंत्रित करता है। श्रोता, परमेश्वर ही है जो प्राकृतिक शक्तियों, भूकंप, ज्वालामुखी तथा मौसम इत्यादि को नियंत्रित करता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर राष्ट्रों को तथा व्यक्तियों को दंडित करता है, और ये प्राकृतिक विपदाएं परमेश्वर की ओर से चेतावनी होती हैं। मित्रवर, परमेश्वर आज भी संसार के कार्यों में क्रियाशील रहता है। मेरा ध्यान इस समय तुर्किस्तान अर्थात तुर्की देश पर जा रहा है, विशेषकर उसके पश्चिमी तट पर उन महानगरों की ओर जैसे इफसुस तथा परगमुस नगर, जो किसी समय रोमी साम्राज्य की जीवनदायक नस नाड़ियां कहलाते थे। जानते हैं इन महानगरों का क्या हुआ? ये महानगर आज खंडहर पड़े हुए हैं। अब ये साधारण कस्बों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनकी महिमा, इनका प्रताप समाप्त हो गया। आप कहेंगे कि ये इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। आपका कहना ठीक है। ये रुचिकर बात है कि मनुष्य सदा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ही जाकर बसता है, और इस समय लोग उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में लाखों की संख्या में जाकर बस रहे हैं, जबकि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और उनका कहना है कि हम भूकंप के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार भूकंप प्रभावित क्षेत्र का भय वहां लोगों को बसने से रोकने में सफल नहीं है। रोमी साम्राज्य का सबसे सघन क्षेत्र आधुनिक तुर्की था, और इस क्षेत्र के साथ क्या हुआ? इतिहासकार बताते हैं कि एक शक्तिशाली भूकंप ने नगरों को नाश कर दिया और लोगों को भागने के लिए बाध्य कर दिया। मित्रवर, ये परमेश्वर का न्याय था। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? हम इन घटनाओं को प्राकृतिक विपत्ति समझकर हम परमेश्वर की चेतावनी की ओर से लापरवाह ना रहें। ऐसा ना हो कि अचानक हम पर संकट आ जाए और हमें बचाने वाला कोई ना हो। बुद्धिमानी इसमें है कि हम इन प्राकृतिक विपत्तियों को देखकर, परमेश्वर की चेतावनी समझकर हम सावधान हों और अपने जीवन पर विचार करें। परमेश्वर पिता यहां अपने न्याय व दंड के विषय में स्पष्ट करते हैं। आइए पांचवें पद को देखिए, मीका नबी की पुस्तक उसका प्रथम अध्याय पांचवा पद। इस पद में वो कहते हैं, ये सब याकूब के अपराधों और इसराइल के घराने के पाप का परिणाम है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी यहां हुआ है वो सब याकूब के अपराधों तथा इसराइल के घराने के पाप का परिणाम है। आपने ध्यान दिया, वह राजाओं तथा उनकी राजधानियों दोनों को संबोधित कर रहा है। इसराइल की राजधानी सामरिया तथा यहूदा की राजधानी यरूशलेम अथवा याकूब। फिर वो कहता है याकूब का अपराध क्या है? दूसरे शब्दों में याकूब के पाप का उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तर है, क्या ये सामरिया नहीं? तब उसका अर्थात मीका का अगला प्रश्न है, यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? उत्तर है, क्या वह यरूशलेम नहीं? यहां नबी सारा दोष देश की राजधानी के सिर पर मढ़ता है। सारा दोष यरूशलेम और सामरिया के सिर पर है। श्रोता, यरूशलेम वह स्थान था जहां उन्हें परमेश्वर की आराधना करनी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वे वहां उसकी आराधना कर रहे थे? जी हां, वे वहां उसकी आराधना करते थे, परंतु वे उन ऊंचे स्थानों पर भी जाते थे जो प्रतिमा पूजा के गढ़ थे, और वहां घोर अश्लीलता तथा अनैतिकता होती थी। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि यही वो बातें हैं जिनके कारण मैं इन दो महानगरों को दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने समस्त यहूदा तथा इसराइल को भयानक रूप से प्रभावित किया है। मीका के समय की समस्या ये थी कि सामरिया तथा यरूशलेम नगर भ्रष्ट हो गए थे और परमेश्वर इन्हें दंड देने जा रहा था। मित्रवर, हमारे देश तथा प्रदेशों की राजधानियों की स्थिति क्या है? समाचार पत्रों तथा दूरदर्शन द्वारा जो दशा हमारे सामने आती है, उसे देखकर अत्यंत दुख तथा भय होता है, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। मैं परमेश्वरहीन लोगों को प्रबल होते और देश को हानि पहुंचाते देखता हूं तो मुझे दुख होता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे देश की स्थापना विश्व में एक महान उद्देश्य से की है। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है कि सरकार परमेश्वर के अधीन है, और मीका इस बात का समर्थन करता है। और आपने देखा कि सरकार के विषय में परमेश्वर का सिद्धांत क्या है, अर्थात परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है। सो समय अभाव के कारण हम आज यहीं पर ठहर जाते हैं। अगले कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।